मेरी जिंदगानी हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपना आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी।
ओम शांति। तो इस मुरली से हमें अगली मुरली चलने तक होमवर्क मिला हुआ है। वैसे तो इस मुरली का होमवर्क तो हमारा पूरा ब्राह्मण जीवन का ही होमवर्क है। इस मुरली का होमवर्क तो पूरा कल्प में हम जो उच्च पद प्राप्त करें उसका होमवर्क है। इसीलिए इसके ऊपर बहुत ही हमें अंडरलाइन करना है। बहुत ही सुंदर मुरली इस ग्रुप में चली थी, सत्यता और पवित्रता के द्वारा बालकपन और मालिकपन का बैलेंस। वैसे जैसे मैथ्स में अगर किसी को सूत्र पता चलता है तो उस मैथ्स का जो उत्तर है तुरंत मिल जाता है, अगर जिसको सूत्र ही पता नहीं है वो क्या करेगा, मुंझ जाएगा, उसको जवाब नहीं आएगा उसका। इसी तरह हमारे भी इस ज्ञान मार्ग में जो हमारा जो लक्ष्य है, हम ब्राह्मण बने हैं या जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसी लिए कर रहे हैं, राजा बनने के लिए, सत्ययुग में उच्च पद प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन उसका सूत्र क्या है? सूत्र है स्वराज्याधिकारी, अपने इंद्रियों का राजा। अगर ये सूत्र को भूल करके हम राजा बनने के लिए और कोई नीति अपनाते हैं, औरों को अपने अंडर में करते हैं या फिर कोई और तरह से हम राजा बनने की कोशिश करते हैं, वो सूत्र नहीं है। चाहे हम कितने भी साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हम चाहे कितने भी भाषण करें, चाहे कितना कुछ भी करें, लेकिन अगर हम अपने ऊपर राज्य नहीं कर सकते, इसका मतलब सूत्र गलत है। तो इसीलिए इस सूत्र का प्रयोग करते हम राजा बनना है। इसलिए बाबा ने इस मुरली में खास बालिक और मालिकपन की नस्या, इसका बैलेंस। वैसे तो बाबा ने कहा, दादी ने और बाबा ने रिजल्ट देखा, उस रिजल्ट में क्या देखा, बालकपन की नस्या तो है लेकिन मालिकपन की जो नस्या रहनी चाहिए, अर्थात जो स्वराज्याधिकारी स्थिति होनी चाहिए वो इतनी नहीं है। जब स्वराज्याधिकारी संगम युग में नहीं बनेंगे तो राजा कैसे बनेंगे? और स्वराज्याधिकारी हम क्यों नहीं बनते? क्यों हमारा मन चंचल होता है? या जो समस्या आते हैं, विघ्न आते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है सत्यता की शक्ति और पवित्रता की शक्ति की कमी। पवित्रता और सत्यता के द्वारा हम मालिकपन और बालकपन का बैलेंस रख सकते हैं, अर्थात स्वराज्याधिकारी बन सकते हैं। सत्यता और पवित्रता हमारे जीवन में है तो क्या दिखाई पड़ेगा? दिव्यता। और दिव्यता कभी छिपाई नहीं छिप सकती। ये गीत है ना अपना, बाबा आपने जो इतना दिया है हम कैसे छिपाए, वो चाहे आंखों से दिखाई पड़ता है, चाहे मुस्कान द्वारा दिखाई पड़ता है, चाहे हर्षित मुख के द्वारा दिखाई पड़ता है। तो जिसके अंदर पवित्रता और सत्यता है, वो छिपाए भी नहीं छिप सकता। तो सत्यता क्या है? सत्यता अर्थात जो मैं ओरिजिनल हूं। सत्य में हम क्या है? हम आत्मा है। इस सत्य स्वरूप में जितना रहेंगे, सत बाप ने, सत शिक्षक ने और सत गुरु ने जो हमें शिक्षाएं दी, जो मर्यादाएं दी, जितना उस मर्यादा में चलेंगे उतना हम, हमारे अंदर सत्यता की शक्ति आएगी, उतनी हमारे अंदर पवित्रता आएगी और उतना हमारे जीवन में दिव्यता आएगी। और इसी का रिजल्ट, जितना हमारे अंदर सत्यता है, पवित्रता है, उतना दिव्यता आएगी, अर्थात ही हमारी आत्मा की ज्योति सदा जागृत रहेगी, आत्माभिमानी स्थिति रहेगी। और जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति रहेगी तो ऑटोमेटिकली स्वयं के ऊपर हम राज्य कर सकेंगे, हम अपने इंद्रियों का राजा बन सकेंगे। इसलिए राजा बनने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है? पुरुषार्थ करना है जो बाबा हमें, सत बाबा, सत बाप जो हमारे लिए जो शिक्षा देता है, जो मर्यादाएं देता है, उसके अंदर रहने का। वैसे तो हम सब ने जैसे कई पानी को यूज करने के लिए बांध डाला जाता है, वो बांध तो डाल दिया, पानी को तो रोक दिया, लेकिन उस बांध को कई छेद है तो पानी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वो आसपास वहां खेती हरी भरी नहीं हो सकेगी क्योंकि पानी ही निकल जा रहा है। इसी तरह हमने पवित्रता का बांध तो डाल दिया, लेकिन दृष्टि के द्वारा, संकल्प के द्वारा, संबंधों के द्वारा, व्यर्त संबंध, व्यर्थ दृष्टि, व्यर्थ सोचना करना, ये छेद के द्वारा वो शक्तियां हमारी वेस्ट जा रही, और जिसके कारण जो हमारा जीवन जो हरा भरा होना चाहिए, जो दिव्यता आना चाहिए, वो नहीं आएगी। इसीलिए जो मालिकपन की जो स्थिति है, हम है तो बाबा के बच्चे है, तो बाबा ने कहा ना, बालिक तो है, सब कहते मेरा बाबा, लेकिन जो मालिकपन की जो स्थिति है वो नहीं है। मन चंचल बन जाता है, भटकती बुद्धि बन जाते हैं और संस्कार भी गलत हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? उन छेदों को बंद करने का पुरुषार्थ करना है। मुझे देखने के लिए मेरे लिए क्या नियम है, बोलने के लिए मुझे क्या नियम दिए हैं, संबंध संग मेरा कैसा हो, सारा दिन इन बातों के ऊपर क्या करना है? अटेंशन रखना है। सारा दिन इन बातों में हमारा अटेंशन नहीं होता, और फिर शाम के समय जब योग में बैठते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा अभिमानी स्थिति रहती नहीं, पता नहीं मेरा मन धोखा देता है, मेरी बात मन नहीं मानता, बिंदु रूप स्थिति नहीं है, मन परमधाम में नहीं टिकता, ये सब कंप्लेन क्यों आते हैं? क्योंकि सारा दिन हमने जो मन के लिए, जो बुद्धि के लिए, या जो संबंध के लिए, सोचने के लिए, दृष्टि के लिए जो नियम थे, उन नियमों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए इस व्यर्थ के छेद को हमें क्या करना है? बंद करना। यही है संपूर्ण पवित्रता, जिसको ही बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी अर्थात शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जो आचरण दिया है, उस आचरण का पालन, तब जाकर के हमारे जीवन में दिव्यता नजर आएगी, तब जाकर के हमारे जीवन में रूहानियत आएगी, तब जाकर के आत्मा हूं कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मा की ज्योति सदा जागृत रहेगी। और जब आत्मा की ज्योति जागृत आए तो आंतरिक सुख मिलेगा, मन भटकेगा नहीं, मन चंचल नहीं होगा, क्योंकि मन को शांति मिल गई, बुद्धि को ठिकाना मिल गया। इसको कहते हैं एकाग्र स्थिति, एकर स्थिति। तो इसलिए व्यर्थों से हमें क्या करना है, बचना है। जितना व्यर्थों से बचेंगे उतना वो हमारी स्थिति बनती जाएगी। जैसे ग्रामेटिकल आप समझो, हिंदी में कुछ लिखा, लेकिन लिखने के बाद अगर पढ़ने में तो है मैं शांति सागर की संतान हूं, ये लाइन लिखी, लेकिन शांति सागर की शांति की जो मात्रा है वो पीछे सीधी टी की मात्रा। कहने में तो शांति सागर की संतान हूं, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो चाहिए कैसी, आगे से मात्रा चाहिए टी की। इसी तरह हम देखते तो सही, लेकिन देखते समय अगर आत्मिक दृष्टि नहीं, मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उस मुरली को धारण नहीं किया, अमृत वाला किया लेकिन नींद करते हुए झुटका लगाते हुए किया, ये हमारे मार्कस कटते जा रहे, इसको भी कहेंगे अपवित्रता। उस अमृत वेला के लिए क्या नियम है विधि से, उस विधि से जब हम करते हैं इसको कहते हैं पवित्र, संपूर्ण पवित्रता। हर कर्म में वो हर कर्म विधि से कैसे करना है, ये बाबा ने सभी विधियां बताई, ये है सत्यता। अगर उसमें हम अपना मन मत पर मत मिक्स करके वो कर्म करते, कोई भानाबाजी करते हैं, सत्यता नहीं है। सत्यता में क्या हो गया, परसेंटेज आ गई। ओरिजिनल आत्मा अपने स्वरूप में नहीं टिक पाएंगी, और जो सत्य होता है नियम पर चलता है वो निर्भय होगा, सत्यता वाला निर्भय होगा। जो कर्म करने के बाद मेरा दिल खाता है, मेरे संकल्प चलते हैं कि मैंने ठीक किया या नहीं किया, वो असत्यता है। जो कर्म करने के बाद निर्भयता आते हैं वो है सत्यता। इसलिए बाबा ने श्रीमत, और जितनी हम इस श्रीमत प्रमाण चलते हैं उतना हमारे अंदर पवित्रता आती रहती। तो पवित्रता मतलब केवल काम विकार पर जीत पाना ये नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातें संकल्प में, बोल में, कर्म में, जब इन छोटी छोटी बातों के पर हमारा ध्यान जाता है तब जाकर के हमारी ऊर्जा अंतरिक्ष शक्तियां जागृत होना शुरू हो जाते हैं, और जिससे हमारी आत्म ज्योति जागृत रहती है, और जिससे फिर हम जो बाबा चाहता है मालिकपन अर्थात इस कर्मेंद्र का राजा वो हम अनुभव कर सकेंगे। अब जितना चाहे परम धाम में मन को टिकाना है टिका सकते हैं, बुद्धि के द्वारा परम धाम में बाबा को देखना चाहे बुद्धि देख सकते हैं, बुद्धि की चंचलता मन की चंचलता खत्म होगी, क्योंकि उसे मन और बुद्धि को रस मिलेगा, आनंद आएगा। मन और बुद्धि क्यों भटकते हैं, क्योंकि आनंद नहीं है। इसीलिए हमें छोटी छोटी बातों के ऊपर क्या करना है, ध्यान देने का ये पुरुषार्थ करना है। तब हम स्वराज्याधिकारी बन सकते हैं। और जो स्वराज्याधिकारी है वही, बाबा ने तो एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी, अगर थोड़ा समय का भी स्वराज्याधिकारी है तो इसे प्राप्ति भी बहुत है। तो ऐसे हमें ये पुरुषार्थ करना है। चलो अभी स्वराज्याधिकारी बन करके सर्वशक्तिवान के साथ परमधाम में 2 मिनट। तो इस तरह से ये बहुत ही एक गुप्त पुरुषार्थ है राजा बनने का, आंतरिक अभ्यास है। हमें इस आंतरिक अभ्यास में चलना है, अपने मन से बातें करनी है। हम राजा बने हैं क्योंकि जैसे बाबा ने कहा ना, सबसे जो धोखा देता है कौन धोखा देता है? मन। क्योंकि मन जो देखेगा, जो आंखें देखते मन सोचना शुरू करता है, कान जो सुनते आंखें, कान जो सुनता है मन सोचना शुरू करता है, बुद्धि जहां जाते मन सोचना शुरू करता है। लेकिन हमें मन से बातें करनी है, जिसको आज बाबा ने भी कहा ना, जैसे स्लोगन था शक के शिकार से दूर रहो। किसी के ऊपर शक लेंगे, दोनों आपस में बात कर रहे तो हम क्या शक लेंगे? हाँ जरूर मेरे बारे में कुछ जरूर होगा, मन सोचना शुरू करता है। उसी समय मन से बात करो, हे मन, हो सकता है वो अपने काम की कुछ बातें आपस में सोच रहे होंगे या लेन देन कर रहे होंगे, या हो सकता है आज की मुरली का चिंतन चल रहा होगा, तुम उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? तो इस तरह से मन से सारा दिन अगर मन कुछ व्यर्थ सोचता है तुरंत वहीं क्या करो, उसको स्टॉप करो। नहीं तो एक बार मन जब सोचता है, मन सोचते सोचते वृत्ति बन जाते, वृत्ति बनने से व्यवहार भी क्या होता है, बदल जाता है। और सोचने से फिर उस दृष्टि से देखने से वही बातें फिर औरों को सुनाने से हमारी पावर खत्म हो जाते। जब पावर खत्म हो गई, मुश्किल से तो योग लगाया था आधा घंटा योग, उस योग में थोड़ी सी पावर मिली थी, वही पावर क्या होगी? वो एक शक किया है, दो आपस में बात कर रहे थे और उस शक से क्या किया, सोचा, औरों को सुनाया, वो पावर भी खत्म। तो फिर आत्मानुभूति कैसी होगी? जब आत्मानुभूति नहीं होगी तो मालिकपन का नशा भी नहीं होगा, खालीपन महसूस होगा, है राजा लेकिन खाली, और इसके कारण दिव्यता भी नजर नहीं आएगी। भवन का ना, जिसके अंदर दिव्यता है उसकी निशानी क्या है? हर्षित मुख, वो सदा हर्षित रहेगा। लेकिन वो जो चमक है चेहरे, चलन और चेहरे में, वो नजर नहीं आएगी। तो कौन कहेगा इनको परमात्मा पढ़ाता है, ये सत्युग में जाने वाले हैं। बाबा कहते हैं किसी को ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका चेहरा, आपकी चलन, आपको कुछ मिला हुआ है, वो नशा ही लोगों को पता बता दे कि इनको कोई ना कोई मिला है ना? कोई परमात्मा मिला हुआ है, इनको पढ़ाने वाला कोई साधारण नहीं है। लेकिन ये झलक क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि इस तरह से छोटी बात छोटी है लेकिन इसे हमारी शक्तियां व्यस्त होती है। तो इसीलिए आंतरिक हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। हमारे साथ किसी ने गलत व्यवहार किया है तो जब वो सामने आता है तुरंत हमारे मन सोचना शुरू करता है, देखो फिर वो आ गया, फिर वो ऐसा है। तो उस समय मन से बात करना है, मन हो सकता है तुम्हारा पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब होगा, अनेक जन्मों का, उसने तो अपना हिसाब किताब लेके गया, तुम्हें तो उसको थैंक्स करना चाहिए, तुम उसके बारे में व्यर्थ क्यों सोचते हो। तो इस तरह से मन जो व्यर्थ किसी के प्रति सोचता है, और मन क्या करता है, फिर एक मन चंचल हो गया, फिर कान भी उसके साथ मिल गए, आंखें भी मिल गई, मुख भी मिल गया, और स्वराज्य खत्म, अधीन हो गए कर्मेंद्रिय के अधीन। फिर वो बात औरों को सुनाएंगे, औरों की भी भावना खराब करेंगे। तो इस तरह से हमें अपने मन को क्या करना है, इन बातों से मुक्त करना है, तब जाकर के मन, जब इन व्यर्थों से मुक्त करेंगे तब मन मनाभव हो सकते हैं, तब जाकर के वो मन क्या करेगा, बाबा से बातें करेगा। मन बाबा से बातें करने के बजाय जो सारा दिन देखा, जो सारा दिन सुना, किसी ने कुछ कहा, उनका चिंतन करता है, और जिसके कारण योग में बैठ करके वो पावर जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, और जो आंतरिक जो रस मिलना चाहिए, जिसे आत्मा की प्यास बुझनी चाहिए, वो नहीं बुझती। इसीलिए जैसे ब्राह्मण होने के बाद भी, बाबा इतना खजाना देने के बाद भी खाली, डबल मालिक हो, एक तो कर्मेंद्रिय के मालिक, दूसरा खजानों के मालिक, लेकिन डबल मालिक पन की यह नशा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मन धोखा देता है। इसीलिए कहते हैं मन जीत, जो मन को जीतता है, मन जीते जगत जीते। तो इसीलिए पहले हमें अपने क्या करना है, मन को जीतना है, क्योंकि संस्कार भी इससे बनते हैं। बाबा ने इसकी संस्कार कैसे बनते हैं उसकी विधि बताएं। मन सोचता है, फिर बुद्धि निर्णय देते हैं, फिर उस संस्कार बनते हैं। तो मन हमारा मन कुछ गलत सोचे ही ना, इसीलिए क्या करें, मन हमारा व्यर्थ ना सोचे, उसको मौका ही ना मिले, इसके लिए जो खजाना है, जिन्होंने ज्ञान के खजानों का जो मनन चिंतन किया है, जिसके पास ज्ञान का खजाना भरपूर है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं सोचेगा। जिसके पास ज्ञान की कमी है उसका मन व्यर्थ सोचेगा। हाँ, ये कैसी क्रिया चलते है, समझो आपने योग किया, आज सवेरे योग किया, लेकिन मुरली नहीं सुनी या मुरली का चिंतन नहीं करते या मुरली को भूल गए, उसके बाद आप कर्म क्षेत्र पर गए, मुरली तो सुनी, कर्म क्षेत्र पर गए लेकिन उसका चिंतन नहीं किया, उसको गहराई से नहीं लिया, तो फिर जब मन को मन के अंदर व्यर्थ कुछ आएगा, जब व्यर्थ आएगा, अगर आपने योग अच्छा किया है, योग अनुभव वाला किया है, तो मन को क्या करेगा, करेगी बुद्धि दबाएगी, नहीं तुम्हें नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। जब आपका योग अच्छा हो तब जाकर के बुद्धि क्या करेगी, वो गलत संकल्प को दबाएगी, कर्मों में नहीं लाने देगी, अर्थात संस्कार नहीं बनेंगे। अब समझो आपने मुरली सुनी, लेकिन अगर योग की पावर नहीं तो संस्कार, योग की पावर नहीं है तो मन क्या करेगा, अपना प्रभाव बुद्धि के ऊपर डालेगा और बुद्धि को डाल करके बुद्धि को दबाएगा, नहीं तुम्हें करना ये, तो क्या करेगा, वो गलत करवा देगा। इसीलिए योग भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। जिसका सवेरे का योग अच्छा है और जिन्होंने मुरली सुनी तो उसके संस्कार चाहे मन भी धोखा नहीं देगा और बुद्धि भी धोखा नहीं देगी, दोनों के ऊपर कंट्रोल आ सकता है। इसीलिए अगर हमें मालिकपन का नशा रखनी है तो इसीलिए सवेरे का अमृत वाला योग और साथ में मुरली, ये दोनों बड़े पावरफुल चाहिए, तब जा करके अब सारा दिन उस स्थिति को अपना सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मालिकपन का क्या करो, नशा। और जिसको कर्मेंद्रिय जिसके अधीन है अर्थात जो सोल कॉन्शियस है, जिसकी कर्मेंद्रिय अपने वश में है, वो डबल मालिक अर्थात शक्तियों का भी शक्तियां उसके ऑर्डर प्रमाण अपने आप चलेगी। जिसका स्वयं पर राज्य नहीं है उसकी शक्तियां भी ऑर्डर नहीं मानेगी। अब चाहेंगे किसी ने कुछ बोल दिया सहन करना चाहेंगे लेकिन सहन नहीं होगा, चाहेंगे किसी ने बात सुनाई उसको अंदर समा ले, समा नहीं सकेंगे, अर्थात वो डबल मालिक नहीं बन सकता और वो सत्युग में फिर राजा नहीं बन सकता। सत्युग में उसका पद जो अधीन होगा संगम युग में इंद्रियों के अधीन, वो अधिकारी नहीं लेकिन क्या बनेगा, दास दासी, अधीन होने वाला दास दासी। इसलिए हमें क्या बनना है, राजा बनना है। अगर हमारे पास ज्ञान का खजाना बहुत है, ज्ञान का खजाना है, हम स्थूल भी ज्ञान धन की सेवा करते हैं, ज्ञान धन दान करते हैं और साथ में स्थूल धन भी दान करते हैं, लेकिन कर्मेंद्रिय के अधीन है, वो साहूकार बनेगा न कि राजा। इसीलिए राजा बनने के लिए सूत्र क्या है, स्वराज्याधिकारी। केवल स्वराज्याधिकारी नहीं लेकिन साथ में ज्ञान धन का दान भी करना है, नहीं तो राजा तो बनेगा लेकिन कंगाल राजा बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्या बनना है यह संगम युग में आप सोचो। तो इसीलिए इस सूत्र का हमें प्रयोग करके ना किसी को अपने अंडर में रखने का पुरुषार्थ करना है, ना कोई और दिखावटी से हम राजा नहीं बन सकेंगे, तो राजा बने। इसलिए बाबा कहते हैं सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, यह सूत्र। बाबा ये नहीं गिनेगा कि कितना साल में, कितना साल ज्ञान में चलते हैं, लेकिन यह पहला लेसन, जिसका यह पहला लेसन पक्का है, जो नेचुरल सोल कॉन्शियस का अभ्यास करता है, जिसकी आत्म ज्योति सदा जागृत है, वही राजा बन सकता है। इसीलिए पहली बात बताई, इसका अभ्यास करने के लिए मन से बातें करो। अगर कुछ व्यर्थ बातें देखते भी है तो बाबा को, बाबा मन को कहो, ये मन यज्ञ बाबा का है, बाबा तो सबके गुण देखता है, तुम उसके अवगुण क्यों देखते हो, क्योंकि हम ग्राहक कौन से, अवगुण ग्राहक है या गुण ग्राहक है, गुणों के ग्राहक है। तो हमें सभी से क्या करना है, गुण देखना है, सभी से एक एक गुण लेना है, अवगुण नहीं लेना। अवगुण लेना मतलब हम कचरे के व्यापारी, दुनिया में भी देखो कचरा तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? उसका भी परिवर्तन करके कमाते हैं, लेकिन किसी के अवगुण देखते हुए भी उसमें से क्या करना है, उसको परिवर्तन करके उससे भी गुण देखना है। क्योंकि यह चिंतन हमें स्वराज्य अधिकारी बनने नहीं देगा। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए अपने आप को देखना है, दूसरा क्या कर रहा है और क्या कर रहा है, औरों को देखने वाला राजा नहीं बन सकता। और वैसे ही स्वराज्य अधिकारी बनने वाला जिसकी आत्मा की ज्योति जागृत रहती है, जो आत्मा अभिमानी स्थिति में है, उसकी निशानी है, उसको किसी की भी बुराई दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर मुझे किसी की बुराई नजर आती है, इसका मतलब ये मेरा देहाभिमान है। इसलिए हम अपने मन के मन को क्या करना है, व्यर्थ से बचाना है। जो मन चंचल है, जो किसको इसको देखने में, उसको सामने देखा उसके बारे में बुराई नजर आई, उसको देखा ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, बाबा ने ऐसे वैसे को बुला करके यहाँ गुलदस्ता बनाए। बाबा तो कहते विश्व की महान आत्माओं को मैंने चुन करके यहाँ इकट्ठा किया है। तो बाबा ने उसके अंदर की कौन सी महानता देखी, उसको देखो। बाबा ने इस आत्मा को यहां क्यों लाया, क्यों ये बाबा को बाबा का बना, बाबा ने इसको ब्राह्मण क्यों बनाया, उस विशेषता को देखना है, उसको भले ढूंढो, लेकिन अवगुणों को हमें नहीं ढूंढना है। नहीं तो सवेरे सवेरे छोटे बच्चे होते हैं ना बड़े शहर में, एक क्या करते हैं, थैला लेकर के कचरा इकट्ठा करते हैं। तो इसी तरह हमें भी कई सवेरे सवेरे उठ करके सारा दिन औरों का कचरा इकट्ठा नहीं करना है। अगर अवगुण देखते तो समझो कि हम कौन है, कहां परमात्मा के बच्चे और कहां कचरा इकट्ठा कर, तो कैसे हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते। इसीलिए हम अपने मन से बातें करने, हे मन तुमने तो मुझे धोखा दिया, जैसे बाबा बात करते थे ना, हे मन तुम आओ तुम्हारे से मुझे बात करनी है, हे बुद्धि तुम आओ। तो इसी तरह हमें आंतरिक अभ्यास अंदर से अंदर, और जो ये अभ्यास करने में व्यस्त रहता है उसको किसी की औरों की बुराई नजर नहीं आती। इसलिए मन से बातें करके हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। और बुद्धि को ठिकाना दो, कोई ना कोई सोमान या कोई ना कोई दृश्य, बुद्धि को कोई ना कोई दृश्य परम धाम को देखने का, या बाबा को सामने साथ में देखने का, या आप ये सोचो कि आज सारा दिन हम क्या करेंगे, औरों का फरिश्ता स्वरूप देखेंगे। जब बुद्धि का ठिकाना होता है तो बुद्धि भटकेगी नहीं। बुद्धि क्यों भटकते हैं, क्योंकि बुद्धि को कोई ठिकाना नहीं, कोई सोमानों का अभ्यास नहीं, तो बुद्धि क्या करते हैं, भटकते हैं। तो इस तरह से मन और बुद्धि के भटकन को बंद करनी है, ताकि जो हम इतना शुद्ध भोजन खाते हैं, इतना हम ज्ञान का खजाना लेते हैं, उससे जो ताकत बनते हैं वो ताकत हमारी बच जाएगी, और जिससे हमारी आत्मा की ज्योति जागृत होगी, जिससे हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। तो स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अनुभव करने के लिए इसका अभ्यास। दूसरी बात है अमृत वेला का योग। जितना हम अमृत वेला का योग पावरफुल और विधि पूर्वक करते हैं, उतना हमारी वो आत्मा अभिमानी स्थिति रहते हैं। और जब हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति है, उसी दिन स्वराज्य अधिकारी स्थिति रहते। आप देखेंगे जिस दिन कभी आप अमृत वेला नहीं करते तो सारा दिन आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं होगी, और जब आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं है तो क्या हो जाएगा, कान जो चाहे सुनेगा, मुख जो चाहे बोलेगा, आंखें जो चाहे देखेंगी, मन जो चाहे सोचेगा। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेशर बाजी टकेशर काजा। अंधेरी नगरी, शरीर हमारी एक नगरी है, इस नगरी का राजा सोया है, अंधेरा है और इस अंधेरी नगरी में जो चाहे हो रहे। इसीलिए जैसे घर में अगर कोई बड़ा नहीं है तो छोटे आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो इसी तरह स्वराज्याधिकारी स्थिति क्यों नहीं रहती, क्योंकि अमृत वेला का योग ठीक नहीं। और जब अमृत वेला योग ठीक नहीं तो सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं, और जब सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं तो स्वराज्याधिकारी स्थिति नहीं। और जब स्वराज्याधिकारी हम नहीं बनेंगे तो भविष्य में हम राजा बनने वाला जो स्वप्न था वो स्वप्न स्वप्न ही रहेगा। इसलिए बाबा कहते क्या करो, राजा बनने का पुरुषार्थ करो। इसलिए अमृत वेला का योग हमें पावरफुल करना है। जितना अमृत वेला पावरफुल करते हैं, जैसे ट्रेन का इंजन जब स्टार्ट करते स्टेशन से, थोड़ी क्या होते मेहनत लगती है, और एक बार इंजन स्टार्ट हो गया फिर स्पीड से चलता है। इसी तरह अमृत वेला हमें थोड़ी सी क्या करना है, मेहनत करनी है। स्टेशन से गाड़ी चलाने के लिए मेहनत करने, और एक बार मेहनत की सारा दिन आपकी गाड़ी पटरी पर चलेगी। केवल आपको ध्यान रखना है नियम और मर्यादा के, जैसे वो ध्यान रखते ना ड्राइवर का, इतना ही लक्ष्य रहता है पटरी से न उतर। इसी तरह सारा दिन आपको कोई कान के ऊपर एक एक कर्मेंद्र पर अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी आत्माभिमानी स्थिति है तो आपको कुछ व्यर्थ सुनने का व्यर्थ बोलने का दिल ही नहीं कहेगा। अपने आप जैसे आप अवॉइड करते रहेंगे, अगर कोई बुरी बातें सुनाता है आप छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आत्मा को आंतरिक वो रस मिल रहा है, वो कर्मयोगी की वो स्थिति है, वो साइलेंस का वो अनुभव कर रहे हैं, अंतर्मुक्ता की अनुभूति हो रहे हैं। इसीलिए लगेगा कि ये बातें तो व्यर्थ, इसे वो किनारा करेगा, ऐसे संग से ऐसी चीजें देखने से वो किनारा करता रहेगा, अर्थात वो स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनी रहेगी। इसीलिए हमें अमृत वेला क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, जिसे हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। और स्वराज्य अधिकारी बनने से हर कर्मेंद्रिया मर्यादा में चलेगी, नियम पर चलेगी, और उस समय जब आपकी कर्मेंद्रिया अपने नियम पर है तो आप डबल मालिक, अर्थात शक्तियां भी आपके अंदर नजर आएगी, किसी ने कुछ कहा तो भी आपके अंदर सहन करने का गुण आएगा, समाने की शक्ति भी आएगी। वो बातें आपको दिल में नहीं लगेगी, क्योंकि जो सोलकॉन्शियस अवस्था में है उसके अंदर सभी गुण, आत्मा अभिमानी स्थिति में जो रहता है उसके अंदर गुण नजर आएगी। इसीलिए हमें क्या करना है, ये होमवर्क करना है। तो जब अभी बाबा 15 तारीख को आएंगे तो क्या देखेंगे, तो एक एक दिन हमें क्या करना है, गिन करके चेक करना है कि आज मैं राजा था, आज मेरे कर्मेंद्र ने कोई धोखा तो नहीं दिया। अगर धोखा दिया तो भी क्या करो, चेक करो, मन ने धोखा दिया, बुद्धि ने धोखा दिया, धोखा दिया अर्थात जो मैंने लक्ष्य रखा था आज उस लक्ष्य प्रमाण चले, कान ने कुछ व्यर्थ सुना तो नहीं, अच्छा सुना भी तो अंदर तो औरों के तरफ नहीं भेजा। इस तरह से रोज क्या करना है, उस 15 दिन के भी आज 5 तारीख है, 10 दिन अभी हमारे पास पड़े, तो इस 10 दिन में मैं रोज रात को क्या करना है, दरबार लगाना है, क्योंकि राजा क्या करता है, राजा दरबार लगाता है। हाँ, अगर हम दरबार नहीं लगाएंगे तो राजा कैसे? राजाओं की निशानी होती है, एक तो राजा दानी होता है, दूसरा राजा के अगर कोई बात नहीं मानता राजा क्या करता है, उसको दंड देता है। अगर हमारी कर्मेंद्रिया कोई कहना नहीं मानती तो क्या करो, दंड भी दो। कौन सा दंड देना है? समझो मुख ने व्यर्थ बोला या कान ने व्यर्थ सुना। पहले कान की महिमा करो, हे मेरे कान, कैसे हम अपने एक एक इंद्रियों से बातें करनी है, हे मेरे कान तुम तो मेरे इस राजा के शान हो, अगर तुमने होते तो मैं भगवान के ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता, और हे कान मुझे तो तुम्हारे जैसे बहुत सारे कान मिले, लेकिन तुम तो बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने ईश्वरी महावाक्य सुने और मेरा तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास है, इसीलिए मैंने तुम्हें बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर है, मेरा तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, लेकिन कभी कभी तुम मुझे धोखा भी देते हो, तुम कहना नहीं मानते हो। जब कोई व्यर्थ बातें सुनाता है तुम उन बातों को सुनने के लिए आगे जाते हो और कहते हो और क्या हुआ। इसीलिए हे कान मेरा तुम्हारे पर विश्वास है और तुम मुझे धोखा देते हो, मेरी बात नहीं मानते हो। अगर बात नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। कौन सी? दोबारा मुरली सुनो, ये उसके लिए सजा है, क्योंकि कान उसके ही व्यर्थ सुनते हैं जिसने ज्ञान का रस नहीं लिया है। जो बाबा के वाणी का जो रस नहीं लेता सुनते समय, वही कान क्या करते हैं, व्यर्थ सुनने का रस लेते हैं। तो इसीलिए उसको सजा का क्या दो, दोबारा मुरली सुनो। फिर उसके बाद मुख को शिक्षा देनी है, कौन सी? दंड देना है। कौन सा दंड? मुख को कहो, मुख तुम भी मेरे इस राजे के शान हो, अगर तुमने होते तो मैं अपना बाजा कैसे बजाता, और तुम्हारे इस होने के कारण मैं बहुत सारी दुआएं कमा रहा हूं, क्योंकि तुम बाजा होने के कारण औरों को ज्ञान सुनाता हूं जिसे मुझे दुआएं मिलती हैं। तो इसलिए हे मुख तुम्हारा बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ भी बोलते हो, किसी की व्यर्थ बातों का चिंतन भी वर्णन भी करते हो। हे मुख तुम्हारा कोई स्थान इसके लिए मैंने नहीं रखा अपने राजधानी में, अगर तुम व्यर्थ बोलेगा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। उसकी कौन सी सजा है? तुम्हारा कल के दिन कारोबार बंद रखूंगा। मुख का कारोबार बंद अर्थात मौन। इसीलिए देखो कान दो दिए हैं, मुख एक ही दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो अगर मुख दो होते हैं तो और ज्यादा मुख बोलता, इसीलिए उसको खाने पीने में भी बिजी रखो। खाने पीने में बिजी रहता है और साथ में बोलता भी है, तो जो कर्मेंद्रिया ज्यादा धोखा देते उसके लिए एक ही रखे वो। माना सुनो ज्यादा और बोलो कम। इसीलिए अगर मुख आज के दिन मुख ने कुछ व्यर्थ बोला है, किसी की बुराई की है, उसके लिए सजा कौन सी? उसका कारोबार बंद, मौन की सजा। तो इस तरह से हमें एक एक कर्मेंद्रिय को क्या करना है, चेक करना है। राजा उसको कहा जाता है, राजा हर एक के पास जाता है, हर एक की पूछताछ करता है। आज हमारी इंद्रिया हमारी कहना क्यों नहीं मानती? क्योंकि ये आज हमें कितना सहयोग दे रहे हैं हमारे राजधानी में, लेकिन आज हमने कभी अपने इस कर्मेंद्रियों का कभी थैंक्स किया ही नहीं, कभी उनके पास जाकर उनका धन्यवाद नहीं किया। हम इतना अपने अपने बातों में बिजी रहते हैं, और इसके लिए कर्मेंद्र कहते हैं मैं इस राजा का कितनी सेवा करता हूं, तो भी राजा मुझे कभी पूछता ही नहीं, इसीलिए वो व्यर्थ में चला जाता है। इसीलिए हमें अपने कर्मेंद्र से बातें करने का टाइम निकालना है, और एक एक कर्मेंद्र का क्या करना है, धन्यवाद भी करना है, उनके लिए क्या नियम मर्यादा है वो भी उसको सुनानी है और उस अनुसार चलना है। तो ऐसे हमें इस संगम युग में क्या करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, और जब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तब जाकर के भविष्य में राजा बनेंगे और तब हमारे जीवन में दिव्यता नजर आएगी। तो इसलिए सत्यता और पवित्रता, सत्यता अर्थात जो ओरिजिनलिटी है जो आत्मा की, उस ओरिजिनल स्थिति में स्थित रहना, इसको कहते हैं सत्यता। आत्मा के जो गुण है उस गुणों में आत्मा स्थित रहते उसको कहेंगे सत्यता। क्योंकि बाबा ने कहा ना, ये ओरिजिनल जो संस्कार है वो आदि संस्कार अनादि संस्कार ये ओरिजिनल है, लेकिन ये बीच के संस्कार ये हमारे संस्कार नहीं। अगर बीच के संस्कार के वश होते हैं मतलब हम असत्य हैं, और जितना सत्यता का आपका परसेंटेज बढ़ती जाएगी उतनी आपकी पवित्रता भी बढ़ती जाएगी, और जिसकी पवित्रता बढ़ती जाएगी उतनी उसकी वो सोल कॉन्शियस स्थिति, आत्मा की स्थिति बनती जाएगी। इसको कहते हैं कर्मातीत, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, कर्मातीत के तरफ जाना। तो कर्मातीत बनने के लिए हमें सत्यता के ऊपर क्या करना है, ध्यान रखना है हर कर्म में मेरी सत्यता क्या है, उसके लिए बाबा के नियम क्या है, उस नियम में चलने का पुरुषार्थ। तो इस तरह से ये पुरुषार्थ करके हम आत्मा को क्या करना है, चमकाना है, और जितना आत्मा को चमकाएंगे उतना आत्मा के ऊपर जो जंक लगा है वो जंक क्या हो जाएगा, निकलता जाएगा। और फिर योग लगाना हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि जो सोल कॉन्शियस स्थिति में रहता है जिसके पास पवित्रता है, पवित्रता पवित्रता को खींचती है। आपको कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं परम धाम निवासी हूं, आपको परम धाम अपने तरफ ऑटोमेटिकली बुद्धि को, जिसकी बुद्धि पवित्र है, पवित्र बुद्धि यहां कहीं भी भटक नहीं सकती, वो ऑटोमेटिकली चुंबक की तरह परम धाम अपने तरफ खींचेगा, अर्थात बुद्धि ऊपर रहेगी, बुद्धि भटकेगी नहीं। इसलिए छोटी छोटी जो व्यर्त बातों में हम जाते हैं, सुनी सुनाई बातों में जाते हैं, किसी के संस्कारों को देखते हैं, व्यवहारों को देखते हैं, तो व्यर्थ बातों से हमें क्या करना है, सारा दिन बचना है। तो अपने मन से आंतरिक अभ्यास करना है और अमृत वेले के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जो बाबा ने हमें जो ये होमवर्क दिए हैं, क्योंकि अगले मुरली में पता नहीं, हम ये नहीं सोच रहे कि चलो बाद में घर जब जाएंगे तब ये अभ्यास करेंगे, तो उसके बाद फिर दूसरा भोजन मिलेगा उसको भी खाना है। तो इसलिए हमें ये 15 दिन बीच में जो मिलते हैं ये अभ्यास करने के लिए मिलते हैं, तो इसलिए ऐसा अभ्यास करके हमें स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।